अब आगे देखते हैं हजरत दाऊद का किस्सा। पीछे ही आपको बता दिया गया कि अल्लाह ताला ने यहाँ हजरत दाऊद और सुलेमान की बातें बताकर हमें ये बताया कि अल्लाह की नेमतें जब अल्लाह की मर्जी से इस्तेमाल की जाएं अच्छे तरीके से, तो वो कभी भी इंसान को तकलीफ नहीं देती। और ये सारा वाक्य हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं, इल्ला ये कि एक वाक्य के। अब नबी को आपने देख लिया, कितने लोग हैं जो अपने दिल में इस वक्त नबी के लिए शदीद मोहब्बत महसूस करें। मेरा तो दिल ऐसे जैसे वो पिघल रहा है ना, ऐसे लगता है कि जैसे तकलीफ तकलीफ, और मतलब मजलूम तो नहीं कह सकती, लेकिन मासूम नबी के सामने लोगों के ये रवैये थे। आज कितने हैं आपके चाहने वाले, लाखों करोड़ों। जिस वक्त आप मक्का में थे तब तो नहीं पता था ना कि मदीना में जाकर ये लाख हो जाएंगे। पहले हजारों में बदले, फिर लाखों में आ गए, आज करोड़ों में। आपको नहीं पता था ना, आपके सामने जो थे उन्होंने आपके साथ क्या किया, ये तकलीफ की बात है। कभी आपने अपने माँ बाप में से किसी के बारे में ये सोचा होगा कि हाय उनकी जिंदगी में तो हालात अच्छे नहीं थे, उन्होंने तो औलाद के दुखी देखे, फिर उनके बाद अल्लाह ने औलाद को कितना माल दे दिया, कितनी औलाद दे दी, कितनी दौलत दे दी। तो कभी हम अपने किसी प्यारे को ऐसे दुख के हालत में दुनिया से जाता देखे तो हम हर खुशी के मौके पर तड़प उठते हैं, हाय उनको ये खुशी नहीं मिली, है ना ऐसी फीलिंग्स। अच्छा उनके बाद अल्लाह ने इतना कुछ दे दिया तो उनकी जिंदगी में होता तो क्या था, सोचते हैं ना। आप बिल्कुल इस वक्त नबी को अपने बाप की तरह सोचे। ठीक है अल्लाह ने उनके दिल को सुकून दिया हुआ था, उनके पास शरे सदर था, वो इसमें भी खुश थे, लेकिन उनकी जिंदगी में और खास तौर पर ये इब्तदाई 13 साल और नबूवत के जो साल थे, अल्लाह के नबी ने क्या देखा, क्या खुशी देखी। दो बेटियों के घर टूट गए, ये खुशी देखी। 3 साल शाबे अभी तालिब में रहे, ये खुशी देखी। अभी एक मुकदमा नहीं पूरा हो रहा था दूसरा शुरू। यह हम सब के लिए एक मैसेज है, हक के लिए उठने वाले कदम इब्तदाई दिनों में बहुत मुश्किल होते हैं, और जो लोग इब्तदा में जम जाते हैं ना, फिर अल्लाह उनको सिले बना देता है, पत्थर बन जाते हैं वो लोग। तभी तो फिर वो देखिए आंधियों तूफानों में वो नहीं लुढ़कते। तो आपको कहीं भी दीन का काम अगर करना पड़े और आप बिल्कुल नए नए उस काम पे हों, तो फिर आप उस वक्त यही मंजर सामने रखें कि ठीक है ऐसे ही होता है। अल्लाह के नबी की जिंदगी में तो इतने भी नहीं थे। बाज दफा आप देखिए कि हमारी दावत का वो नतीजा नहीं निकलता जो हम सोचते हैं। 100 लोगों को बुलाते हैं, 10 लोग आते हैं, हम कहते हैं हम नाकाम हैं। कभी ऐसे वक्तों पे अपने दिल को टूटना तोड़ें कि नहीं इसमें खैर होगी, इसमें इंशाल्लाह मेरे लिए भी और मामला, और अल्लाह ताला ने मेरे लिए ये मामला आसान किया तो मैं इसको देखूंगी किस तरह से, कि आज अगर नहीं मानने वाले, हो सकते हैं बाद के दौर में लोग अच्छे हो जाएं, बाद में मेरी बात को सुन के मान के लोग और आगे आ जाएं और इस तरह खैर होगी। तो मोमिन कभी डिप्रेस नहीं होता, वक्ती तौर पर तकलीफ तो होती है, ये तो मैं नहीं कहती कि इंसान पत्थर है, पत्थर तो नहीं है इंसान, लेकिन ऐसे वक्तों में संभालें खुद को, कोई बात नहीं, कभी खिजां भी तो आ जाती है, पत्ते सारे उतर भी तो जाते हैं, फिर इंशाल्लाह लग जाएंगे। पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। तो ईमान वाले का दिल जब अल्लाह की जात से जुड़ा रहता है ना, तो फिर वो परेशान नहीं होता। इसीलिए अब आप उस सारे स्नैरियो को सामने रखें और सुने, इस बिरला यकुलून आयत 17 में अल्लाह अपने नबी को कहते हैं, सबर कीजिए नबी, ए मोहम्मद आप सबर कीजिए इस पर जो कुछ ये कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे थे वो पीछे आप सुन चुके हैं, हाजा साहिरुन कज़्ज़ाब, और अपनी जात की रुसवाई करवाना, अपनी बेइज्जती कराना सबसे तकलीफ दे होता है। आपको पता, कोई किसी जगह जाकर आपको कुछ और दे ना दे, चीज से महरूम कर दे, आप बर्दाश्त कर लेंगे, बेइज्जती को कर दे आप वो बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह कहते छोड़ो, अपनी जात के खौल से निकलो, इस फिर सब्र करो। वस कुरा बदाना दाऊद अजल ईद, और आप तस्करा कीजिए हमारे बंदे दाऊद का जो बहुत कुव्वत वाले थे, लफ्जी माना देखे तो हाथों वाले थे, इन्नहु अव्वाब वो बहुत रुजू करने वाले थे। पहले इनकी जरा शख्सियत को पढ़ लेते हैं, फिर इसमें छोटी छोटी बातों को देखेंगे। दाऊद के लिए पहली बात आ गई जलईद, कुव्वत वाले थे। दूसरी बात इन्नहु अव्वाब। तीसरी बात इन्न सखर नल जिबाल माहू, हमने तो इनके साथ पहाड़ों को मुसखर कर दिया था। युसब्बिहन बिल अशी वल इशराक, जो इनके साथ तस्बीह करते थे शाम को भी और सुबह के वक्त भी। वत्तैरा मखशूरा, और परिंदे भी जो के जमा कर दिए जाते थे। कुल्लु लहू अवाब, सब के सब इसकी तरफ रजू करने वाले थे। वशदत ना मुल्कहू, और हमने इसकी हुकूमत को मजबूत किया था। वातैनाहुल हिक्मा, और हमने उसको हिकमत भी दी। वफसल खिताब, और फैसला कुन बात कहने की सलाहियत भी दे दी। कितनी खूबियां हो गई हजरत दाऊद के साथ, गिन रहे? 9 हो गई। 9 बातें हजरत दाऊद की बताई जा रही हैं अल्लाह के नबी को। जरा इन चीजों को एक एक दफा देख लेते हैं। पहली बात है जल ईद, हाथों वाले थे, कुव्वत वाले थे। सवाल पैदा आता है कि हजरत दाऊद के पास कौन सी कुव्वत थी? नंबर एक, जिस्मानी कुव्वत, स्ट्रांग थे, जालूत को मार चुके, सुन चुके हैं वाकयात, स्ट्रांग मैन थे। इखलाकी कुव्वत थी, इखलाक बड़ा बुलंद था। रूहानी कुव्वत थी, इस तरह के मुजाहदे करते थे कि आम इंसान उसके बारे में सोच ही नहीं सकता। और ईदिन यदुन की जमा नहीं है, बल्कि अदा ईद थुन का मस्तर है। यहाँ कुव्वत और शिद्दत मुराद है, तकवियत। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज, और सबसे ज़्यादा महबूब रोज़े दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े हैं। वो निसफ रात को सोते, इमेजिन करें, ईशा के बाद सो जाते थे, आधी रात तक सोते, फिर उठकर रात का तिहाई हिस्सा क़याम करते, फिर इसके बाद छठे हिस्से में फिर सो जाते, और फिर उसके बाद फजर के लिए उठते थे। एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन नागा करते, और जंग में फरार ना होते। ये सही बुखारी की रिवायत है किताबुल अंबिया की, और मुस्लिम में भी है। ये थी ताकत, कितना सबर था। रात को नींद छोड़ना क्या मांगती है? सबर। रोज़ा रखना क्या मांगता है? और इनके बारे में आता है कि इन्होंने अपने औकात के 3 हिस्से किए हुए थे। एक वक्त अपने रब के लिए, ज़ाती इबादत के लिए, एक में घरदारी, बच्चों उनको देखते थे जो भी उनके अपने काम थे, और तीसरा वक्त हुकूमत के कामों को देते थे। टाइम मैनेजमेंट बहुत खूबसूरत थी। जंग से ना भागना इन किस चीज़ की दलील है? बहुत बहादुरी के ना। फिर आप देखिए कि अल्लाह ताला के सामने थे इशराक के वक्त, और आखिरी दिन का जब वक्त होता और उस वक्त कुरान पढ़ते, तो दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ परिंदे उनके साथ पढ़ने लग जाते। उड़ते हुए परिंदे इनकी ज़ुबान से जबूर की किरत सुनकर वहाँ जमा हो जाते। कहते हवा में सब जमा होकर उनके ऊपर खड़े होके वो भी तैरते रहते और तस्बीह करते। लफ्ज़ महशूरा मजमूआत उनके मानी है, यानी परिंदे इधर उधर से आ जाते थे। आज भी जब कोई अच्छी आवाज़ में कुरान पढ़ता है तो बच्चे भी वहाँ चल पड़ते हैं, तवज्जो हो जाती है। अल्लाह ताला ने मादी और रूहानी असबाब के जरिए इनको कुव्वत दी। फिर आप देखिए नबूवत थी, हिकमत थी, क्या चाहिए था? और अच्छे काम करते थे, मुकदमात के फैसले करने की सलाहियत थी, बसीरत थी, तफक्को थी, इस्तदलाल था, यानी इतनी खूबियाँ दी। लेकिन याद रखिए, जिसको जितनी बड़ी खूबी मिलती है ना, उसकी आजमाइश भी उसी में आती है। हज़रत दाऊद को अल्लाह ताला ने इल्मी और अमली कुव्वत दी, जहनी ताकत दी, उसी में उनका इम्तिहान हो गया। आगे आ रही है बात, मुजाहिद कहते हैं कि मुराद इतात की ताकत है। जलाइद से मुराद के इतात बहुत ही, देखिए अल्लाह की इतात करना ताकत है कि कमज़ोरी है? हम क्यों नहीं कर पाते? कमज़ोरी बहुत है, छोटी सी बात पर हम हिल जाते हैं। हज़रत दाऊद को इबादत की कुदरत और इस्लाम की फिक अता की गई थी। आप हर रात तिहाई रात तक तहज्जुद में खड़े रहते, और एक दिन बाद एक दिन हमेशा रोज़ा रखते। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें भी ऐसा कर दे। अपने लिए दुआ करें। अल्लाह के नबी फतह मक्का वाले दिन जुहा के वक्त हज़रत उमेहानी के घर में थे, तो आपने 8 रकत नमाज अदा की। यानी आप भी तस्करा करते थे कि दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह अकबर, दुआ कीजिए कि हमारे अंदर ये ताकत आ जाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल कुछ इनसे कम नहीं था। तभी तो अल्लाह ने कहा कि या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला, रात को खड़े हुआ करो मगर थोड़ा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी निसफ हुआ कुछ उससे कम कुछ ज़्यादा। तो ये ताकत इंसान को अल्लाह के आगे खड़ा करती है। और अल्लाह ताला ने इनको लश्कर और ये सारी चीज़ें कितनी दी थी जिनका इधर जिक्र किया, शदद ना की बात आई ना, फरमाया कि इनकी सल्तनत मजबूत कर दी। कहते हैं 4,000 इनकी मुहाफ़ज़ फ़ौज थी, यानी 4,000 लोग इनकी हिफाजत करते थे। इस कदर फ़ौज थी कि हर रात 33,000 फौजी पहरे पर चढ़ते थे, लेकिन जो आज की रात आते फिर साल भर तक उनकी बारी ना आती। इतनी बड़ी आर्मीज थी मुस्लिम्स के पास, 40,000 आदमी हर वक्त इनकी खिदमत में मुसल्लह तैयार रहते, असलह लिए हुए 40,000 लोग तैयार होते। एक रिवायत में कि इनके ज़माने में बनी इसराइल के दो आदमियों में एक मुकदमा हुआ, हर एक ने दूसरे पर दावा किया कि इसने मेरी गाय छीन ली है, दूसरे ने इस जुर्म से इनकार किया। हज़रत दाऊद ने दावा करने वाले से दलील तलब की, वो कोई गवाह पेश ना कर सका। आपने फरमाया, अच्छा तुम्हें कल फैसला सुना दिया जाएगा। रात को हज़रत दाऊद को ख्वाब में हुक्म हुआ कि दावेदार को कत्ल कर दो। सुबह आपने दोनों को बुलाया और हुक्म दिया कि इस मदई यानी दावा करने वाले को कत्ल कर दो। इसने कहा, अल्लाह के नबी, आप मेरे ही कत्ल का हुक्म दे रहे हैं, हालांकि इसने मेरी गाय चुरा ली है। आपने फरमाया, ये मेरा हुक्म नहीं, ये अल्लाह का फैसला है, और नामुमकिन है कि ये टल जाए, तू तैयार हो जा। तब इसने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं अपने दावे में तो सच्चा हूँ, इसने मेरी गाय गसब कर ली, अल्लाह ने आपको मेरे कत्ल का हुक्म मेरे इस मुकदमे की वजह से नहीं, इसकी वजह कुछ और है और वो सिर्फ मैं जानता हूँ। बात यह है कि आज मैंने इसे फरेब से कत्ल कर दिया है जिसका किसी को इल्म नहीं है, बस इसके बदले में अल्लाह ने आपको कसास का हुक्म दिया है, चुनाचे वो कत्ल कर दिया गया। अब तो हज़रत दाऊद की हैबत हर शख्स के दिल में बैठ गई। यानी आप देखिए कि हर बंदे को अपना जुर्म पता होता है ना, मुकदमे में वो सच्चा था दावा करने वाला, लेकिन उसने दूसरे को कत्ल कर दिया था, अल्लाह ने उस पर इनसे कत्ल करवा दिया। इस तरह इनके बारे में आता है कि इनसे अल्लाह ताला ने मुकदमों के फैसले कराए। और यहाँ ये भी याद रखिए कि उस दौर में बादशाह काजी भी होता था, अदालत का जो जज है, चीफ मिनिस्टर है, वो भी बादशाह होता था। बेहतरीन असूल दुनिया में चलता ही तब है जब हुक्मरान ही अदलिया को कंट्रोल करे, वरना तो आप देखते हैं जो हमारे मुल्कों में होता है, अल्लाह की पनाह, बात बड़ी सच करते थे। आप देखिए खतीबुल अंबिया, खतीबुल अंबिया तो हज़रत शुएब है ना, लेकिन ये जो बात है ना कि बात बड़ी मुदलल थी, ये अल्लाह की नेमत होती है। हम सब अपने बात करने को देखें, इतने बीच में पॉजेस के अगला बंदा कहता है प्लीज़ जल्दी करें, और इतनी लंबी बात के आपके दो जुमलों के बाद अगले का माइंड आउट कि अच्छा आप जब एंड पे पहुंचेंगे तो खुद ही मैं कनेक्ट कर लूंगी इसकी बात के साथ। ये बहुत बड़ी नेमत है फसल खिताब। फसल कहते हैं अलग अलग को, खिताब खताबा से, यानी ऐसा खिताब, ऐसी बात जिसकी हर बात अलग समझ आए। और अल्लाह के नबी में भी ये खूबी थी, इतने आराम से बात करते थे कि अगर लिखने वाला आपकी बात को लिखना चाहे तो लिख सकता है। हम अपने बोलने के अंदाज को भी देखें कि हमारा हालात ऐसे हैं, हम जब बोलते हैं तो कित, और ख़ास तौर पर दीन की बात करने वाले के लिए बोलना अल्लाह की नेमत है। ये जैसे जौहरी के हाथ में हथियार होते हैं ना, इसी तरह दीन के दाई की जुबान सबसे बड़ी दौलत है। अच्छी बात करके पहुंचा देने से इंसान थोड़ी सी बात को भी अगले तक पहुंचा के आ जाता है, और अगर दिल में हजारों बातें इल्म के आपके पास ढेर हैं, आप बात नहीं पेश कर पा रहे आगे जाके, तो क्या इल्म आपके तक रहेगा। और ये अल्लाह की नेमत भी होती है और इसको मांगना चाहिए। रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, इस तरह से अल्लाह से मांगा करें। बल्कि ये जितनी खूबियाँ अगर आप इन सब को अलग से लिखें और फिर अपने आप को चेक करें, क्या मेरे अंदर है क्या नहीं, हिकमत है कि नहीं, मांग लेती हूँ, बात अच्छी नहीं होती कोई बात नहीं, अल्लाह से मांगती हूँ, अल्लाह दे सकता है। और अच्छी बात कहने के लिए अच्छी बातें कहना शुरू कर दे, जितनी अच्छी बातें कहेंगे उतनी अल्लाह ताला आपके लिए उस बात को कहना आसान कर देंगे। हम अपनी ज़ात में जब खो जाते हैं ना कि मैं नहीं बात करती लोग क्या कहेंगे, बस समझ लें कि आप लोगों को बात दिखा रहे हैं। जिस वक्त अल्लाह ताला के हाँ आपका मुकाम होगा ना, तो आप लोगों से बेनियाज होंगे, उसमें बात भी अच्छी निकलेगी इंशाल्लाह। इनके बारे में अल्लाह के नबी फरमाया करते थे, काना आबदल बशर, वो सबसे ज़्यादा इबादत गुजार आदमी थे। अल्लाह हमें भी बना दे, अपनी बातों के लिए दुआ करते यकीन करें, इसकी बहुत ज़रूरत है। अब अगली आयतों में देखिए एक मुकदमा है, बहुत सिंपल है, आसानी से समझ जाएंगे इंशाल्लाह ताला आप भी, कि अल्लाह ताला ने इनको क्या समझाया। आजमाइश है असल में इनकी, है अक्लमंद थे लेकिन फैसला गलत करने पे आ गए, और ये सारी चीज़ें हमें देखनी है अपने अंदर से। बल्कि आप कह लीजिए कि ये बड़ा मुश्किल हिस्सा है कुरान का जो अब हम पढ़ने लगे हैं, इसमें बहुत कमी बेशी हो जाती है, और तारीखों में आपको ऐसे ऐसे अजीबो गरीब वाक़यात मिलेंगे कि हज़रत उमर कहा करते थे, जिसने हज़रत दाऊद के बारे में یہ واقعات پیش کرے اس کو 80 درے لگواؤں گا، یعنی تہمت کے. لوگوں نے اس پہ بہت عجیب و غریب باتیں کہیں، اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. آئیے سنتے ہیں. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آپ کے پاس خبر آئی ہے جھگڑنے والوں کی؟ ایک مقدمہ تھا، دو دعوے داروں نے حضرت داؤد کے سامنے مقدمہ پیش کیا. کیسے؟ اس تصور المحراب، جب وہ دیوار پھلانگ کر محراب میں داخل ہو گئے. تصور کا لفظ کس سے ہے؟ سور. اور سور کس کو کہتے ہیں؟ سین سے. دیوار کو کہتے ہیں، پیچھے صورت کی تفصیل میں بتایا تھا آپ کو. یہ جو لفظ صورت ہے، باؤنڈری وال، یہ بھی ایسی ہے، ایک صورت کی دیوار دوسری صورت سے مضامین کو الگ کرتی ہے. اسی سے لفظ تصور ہے، دیوار پھلانگنا. اکیلے میں، تنہائی میں، عبادت میں مصروف تھے، اچانک دو لوگ ان کے حجرے میں آ دھمکے. اس دخلوا علی داود ففزیع منہم، جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان سے ڈرے. یعنی ایک دم، آپ بھی سوچئے نا، سب حفاظتی انتظامات کے باوجود دو آدمی اگر اچانک آپ کے پاس تنہائی میں آ جائیں تو غیر معمولی واقعہ تھا. تشویش ہوئی، کیوں آئے، کیسے آگے. لیکن قالوا لا تخف، انہوں نے کہا مت ڈرو. خصمانی، ہم دو جھگڑنے والے ہیں. خصمان تثنیہ کا صیغہ ہے. بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. یعنی ہم دونوں مقابل ہیں ایک دوسرے کے، ایک ہی بات پہ ہم دونوں جھگڑ رہے ہیں. لہذا فاحکم بیننا بالحق ولا تشتت، تو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے اور آپ اسے ٹالیے نہیں. یعنی بڑا اہم مقدمہ ہے، اس کا ہم فوری فیصلہ چاہتے ہیں. یہ نہ کریں کہ بعد میں کریں، جیسے ہماری عدالتوں میں ٹل جاتے ہیں. کب تک؟ آپ کی وفات تک. بعض دفعہ لوگوں کی وراثت کے مقدمے ہوتے ہیں، وہ پانے تک آپ خود فوت ہو چکے ہوتے ہیں، پھر آپ کے بچوں کی وراثت بن جائے گی. وہ یہ عام بات ہے ہمارے ملکوں میں، کہیں اس کو لٹکائیے گا نہیں، سیدھا سیدھا بتا دیں. واہدینا الی سوائے الصراط، اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کیجئے. یعنی ہماری باتیں سن کر ہمیں بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور اس کی بات کر دیں. اور جو مدعی تھا اس نے اپنا مقدمہ کیسے پیش کیا؟ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. نوٹ کریں، ہے مقدمہ لیکن بھائی، یہ اچھا انداز ہے. لہو تسوں و تسوں ناجتن، اس کی 99. تسون کس کو کہتے ہیں؟ 9. اور تسون 90. تو 9 اور 90 کیا ہو گیا؟ 99. 99 اس کی 99 ناجتن ہے. ولی ناجتن واحدتن، اور میری بس ایک ہی دمبی ہے. ناجا کس کو کہتے ہیں؟ بچی کا نام نہ رکھ لے، دمبی کو کہتے ہیں، شیپ کہتے ہیں. قرآن میں پڑھا تھا، بڑا پیارا نام ہے ناجا، تو دمبی کو کہتے ہیں. بہرحال اچھا جی، اب کیا بات ہے کہ اس نے کہا کہ میری 99 ہے، اس کی ایک ہے. یہ کیا چاہتا ہے؟ فقالا، پھر کہتا ہے اکفلنیھا، یہ ایک بھی مجھے ہی دے دو، یعنی اس کی ایک کی کفالت بھی میں ہی کروں. وعزنی فی الخطاب، اور اس نے دبا لیا ہے مجھ کو گفتگو میں. اب سمجھ آ گئی مقدمہ کیا ہے؟ کہ میرے پاس ایک ہی ہے، اس کے پاس 99 ہے، بجائے اس کے کہ اس میں سے 49 مجھے دے دے، دونوں کی 50-50 ہو جائے. کہتا ہے یہ ایک بھی مجھے دے دو تو میرا فیصلہ کیجئے. اور باتیں بڑی خوبصورت کرتا ہے، اس نے اپنی باتوں میں مجھے ٹرخا دیا. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا، تم میں سے کوئی آتا ہے وہ بڑا چرب زبان ہوتا ہے، اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، اور اس کی بات سن کر اگر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں جو غلط ہو، تو قیامت کے دن وہ زمین کے ان 7 ٹکڑوں کو جو اس کے نیچے ہیں اپنے گلے میں توک پہنا کر آئے گا. جج کو نہیں پتا ہوتا، آپ نے فرمایا میں انسان ہوں، جو تم کہو گے میں سمجھ جاؤں گا. تو اس لیے کبھی کو کسی کے بارے میں غلط بات نہ پیش کرے. خیر، حضرت داؤد کیا کہتے ہیں؟ قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعاجه، داؤد نے کہا یہ تو واقعتاً اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا مطالبہ کر کے. ہاں لیکن یہ جملہ ہائی لائٹ کر لیں، کبھی کسی کے ساتھ اگر شراکت کی ہے، شیئرنگ کی ہے، پارٹنرز ہیں، تو یہ جملہ آپ سب کے لیے ایک واقعی کہہ لیجئے کہ نظروں میں رکھنے والا جملہ ہے، کہ وہ ان کثیرم من الخلطائی، اور یقیناً مشترک معاملہ رکھنے والوں میں سے، یعنی پارٹنرز، لا یبغی بعضهم علی بعض، اکثر بعض بعض پر زیادتی کر جاتے ہیں. یعنی قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہوں، جب مل کر کاروبار کرتے ہیں، جس کو پنجابی میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ شریکا. تو شریکے والے اکثر جہاں موقع پڑتا ہے دوسرے کے ساتھ زیادتی کر ہی جاتے ہیں. بات سمجھ آئیے، پارٹنرشپ اس لیے پسندیدہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہر بندے کے نفس میں اپنا فائدہ ہے. پیچھا پڑ چکے، وہ خزرت الانفس नफ्स जो है वो हाजिर किए गए किस पे? शुख पर। हर बंदे के अंदर बुखल है, बुखल कहता है मुझे ज्यादा फायदा मिल जाए, तो उस फायदे को पाने के लिए दूसरे पे ज्यादती कर ही जाता है बंदा। कौन रोकेगा इस ज्यादती से? इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात, सिवाय इन लोगों के जिनके अंदर ईमान भी और नेक अमल भी करें। यानी ईमान और नेक अमल करने वाला दूसरे पे ज्यादती नहीं कर सकता। हाँ लेकिन कलीलुम्मा हुम, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी शराकत करनी है ना तो ईमान वाले के साथ करें, पैसे वाले से ज्यादा। अमल साले वाले के साथ करें क्योंकि वो जुल्म नहीं करेगा। खैर मुकदमा खत्म, यहाँ अल्फाज पूरे हो गए। वजन न दाऊद व नमा फतन ना हो, और दाऊद को अचानक ख्याल आ गया कि हमने इसको आजमा लिया। यानी हजरत दाऊद चूके साहिब हिकमत थे, अल्लाह की तरफ से उनके पास एक कुव्वत थी जिससे वो हालात को रिलेट कर रहे थे, फौरन समझ गए कि ये मेरी आजमाइश है। ये दो लोगों का आना, मुकदमा पेश करना ऐसे ही नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह मुझे वॉर्न कर रहा है। फस्तग़फ़रा रब्बहू, फौरन उन्होंने अपने रब से इस्तग़फ़ार की। वह खर्रा राकियन, और रुकू में गिर गए। वह अनाब, और पूरी तरह मुतवज्जे हो गए। रुकू से मुराद क्या है? झुकना। यहाँ राकियन से रुकू भी मुराद है और सजदा भी है। अब ये क्या था, कैसे था? कुरान हमें इसमें कुछ नहीं कहता, लेकिन इसराइली रिवायात में इस बारे में इतना कुछ है कि बोलने को दिल ही नहीं करता। यहां तक जालिमों ने कह दिया कि इनकी फौज में से एक शख्स की बीवी इनको बड़ी पसंद आ गई थी, और अपनी इनकी उससे पहले 99 बीवियां थी, तो इन्होंने कहा उस एक को तलाक दो ताकि मैं उससे शादी कर लूं तो मेरी 100 पूरी हो जाए। नबियों के बारे में तो हम ये बातें नहीं कह सकते ना, क्योंकि हजरत उमर होंगे तो वो 80 कोड़े लगवाएंगे कि तोहमत लगा रहे हो। ये क्या था? उनका वाकया छोड़ दीजिए, आइए इसको अपने ऊपर लेके समझते हैं। क्या आपके साथ अक्सर ऐसा नहीं होता? आपके सामने कोई हालात पेश हो जाते हैं और असल में वो आपके अपने हालात से रिलेट कर रहे होते हैं। दौरे कुरान में आपको मैंने हिदायत की 10 किस्में लिखवाई थी, जिसमें एक लिखाई थी हुदल बयानी, हुदन हिदायत से बयानी, किसी दूसरे के हालात को देखकर अपने लिए उसमें से नसीहत लेना। बस आप देखिए कि अब मैं यहाँ आपको पढ़ाने आई, मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ सूरह स्वाद की आयतें, एंड पे हो सकता है कोई नई साथी आई हुई, वो कहते हैं मैंने एक सवाल पूछना है। वो कोई ऐसा सवाल करे आके कि जिसको सुन के मुझे अपना कोई किसी घर में आने से पहले, जाने के बाद, या मैंने कोई प्लान सोचा हुआ था रिश्तेदारों में किसी के साथ कोई ज्यादती का, मुझे फौरन सूझ जाए कि ये तो मैं करने वाली थी, ये मुझसे पूछने आ गई है। तो गोया कि अल्लाह ने उस सिस्टर के जरिए मुझे गाइड कर दिया कि देखो अल्लाह को पता है कि तुम ये सोच रही हो। और ये नबियों की इस्मत है, इसको इस्मत अंबिया कहते हैं। नबियों के दिलों में बशर होने के नाते से अगर कोई ख्याल भी आने लगता था ना, तो अल्लाह हालात ऐसे पैदा कर देता था कि वो संभल जाते थे। इसको हुदल बयानी कहते हैं, और ये अल्लाह से मांगनी चाहिए। एक रिवायत भी आती है ना, किसी का बयान है कि असईदु मम वुईदा बगैर ही, खुशकिस्मत है वो जो दूसरे के हालात से नसीहत ले रहे। तो जिंदगी के इस बाजार में जब आप निकलेंगे तो आपको चारों तरफ तजुर्बात मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। इस तरह से ये सारी चीजें जो होती है ना, इसको लेकर समझें, और ये हिकमत होती है। और जितना इंसान दूसरों से सीखता है, अल्हम्दुलिल्लाह आजकल क्या कब से ये सिलसिला, शायद कोई दिन ऐसा गुजरता हो किसी का कोई मसला, शौहर बीवी का झगड़ा, मामला तलाक तक पहुंची हुई बातें, रिश्ते नहीं, अल्लाह के हुक्म से 2-3 केसेस से डेली बात होती है रात दिन में। और मैं कहती हूँ जो मैं उससे सीखती हूँ वो शायद वो भी नहीं सीख पाते जो मुझसे पूछ रहे होते हैं। मैं अल्लाह की तरफ से इसको एक तोहफा समझती हूँ, और जो मुझे उसके बाद खुशी मिलती है, टूटते हुए घर, बिल्कुल एग्जैक्टली रिश्ता हुआ हुआ बात टूटने के करीब थी, लेकिन जब उन्होंने अपना बात पेश की तो वही अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि एक तरफ की बात ना सुनो दूसरे की सुनो। उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक आपके शौहर के मुंह से हम ना सुने हम आपको कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल मैं करीब थी कि उनको कह दूं कि फिर छोड़े ना लें रुख्सती, खत्म कर दे मामला, और अल्लाह का शुक्र है बात बनने वाली थी। और उन्होंने अपने शौहर को मैसेज दिया कि आप भी बात करें, इधर सर के जरिए मेरी बात हुई, जो उनसे बात की यकीन करें कि जमीन और आसमान का फर्क। और उसके बाद सिर्फ 2 जुमलों में उनको कहा कि फौरन आप बात करें इधर और जाएं अपने घर, छोड़े अपनी फैमिली को। यानी इस तरह के शैतान रखने डाल देता है बाज़ औक़ात। कभी किसी एक ही बात सुन के फैसला ना दें, कभी अधूरी बात का ना सुने, और क्लियर कट अगले को बताएं कि जब तक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे आपकी नहीं मानेंगे, चाहे वो आपकी दोस्त आपसे दुख सुख करे। हम अपनी दोस्तों को इतना साथ क्यों देते हैं और हम उनके मियाओं के खिलाफ क्यों हुए होते हैं? क्योंकि हर मौके पे तो दोस्त ने चाय का कप हाथ में पकड़ा के दुख भरी कहानी सुना दी। हम दिल में सोचे होते हैं कि हमारी दोस्त का मियाँ दुनिया का जालिम तरीन, बेवकूफ तरीन और कमजोर तरीन इंसान है। कभी उससे एक बंदे से भी तो पूछो कि ये इस औरत के साथ गुजारा कर रहा है, इतना ही बड़ा उसका एहसान नहीं है? तो ये हिकमत है, असल में इसमें मुकदमों की हिकमतें सिखाई गई हैं। हम फौरन पटक से बात करते हैं, जिसकी बात सुनते हैं उसको हम वेरीफाई करके आते हैं। हालांकि मैंने अपने अंदर इसे बिल्कुल ही अपोजिट देखा है। जो कहने आता है मैं उसको पहले पूछती हूँ कि आप बताएं कि आप क्या हैं और आपके अंदर क्या और क्या, क्योंकि आप कैसे सुन सकते हैं? हदीस में आता है कि किसी की बात सुनकर एकदम फैसला ना दो जब तक आप दूसरी तरफ से बात ना सुन लो। इसमें से मैं ये सिखाया गया, पब्लिक डीलिंग, लोगों से मामला, और यकीन करें हर इंसान में खैर है। इसमें जो मुझे दिन ब दिन ये चीज़ फायदा दे रही है वो क्या, कि मेरे जहन से अब ये और ही दिल में निकलता जा रहा है कि दूर से जो शख्स आपको दीन से दूर स्टबन और अजीब लगता है ना, आप जरा उसकी भी तो बात सुने, वो भी इतना बुरा नहीं है जितना लगता है। ना कोई घर टूटना चाहिए ना कुछ, पहले आप ये देख लें कि आप खुद किधर खड़े हैं। हम अपने आप को चूंकि नहीं देख रहे होते, दूसरे को देख रहे होते हैं। और आप देखिए कि हजरत दाऊद ने इस नेमत को पाकर शुक्र का सजदा किया। अल्लाह के नबी की भी ये सुन्नत थी। बास कहते हैं ये तौबा का सजदा था, बास कहते हैं ये शुक्र का सजदा था। इब्ने अब्बास का कौल है कि सूरत स्वाद जरूरी सजदों में से नहीं, आगे सजदा आ रहा है। हाँ, मैंने नबी सल्लम को सजदा करते हुए देखा है। निसाई की रिवायत है, आपने यहां सजदा करके फरमाया ये सजदा हजरत दाऊद का तो तौबा के लिए था और हमारा शुक्र के लिए है। तिर्मिजी में एक रिवायत है कि एक शख्स ने कहा अल्लाह के रसूल मैंने ख्वाब में देखा है गोया एक दरख्त के पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ और नमाज में मैंने सजदे की आयत तिलावत की और सजदा किया तो मेरे साथ इस दरख्त ने भी सजदा किया तो मैंने सुना कि वो ये दुआ मांग रहा है। ये दुआ बड़ी खूबसूरत है, आप लोगों ने शायद कभी सुनी है कि नहीं, आप बल्कि पढ़ ही लें मेरे साथ तो अच्छा है। अल्लाहुम्मक्तुब ली बिहा इंदक अजरन वज अल्हा ली इंदक जुखरन वदा बिहा अन्नी विजरन व अकबलहा मिन्नी कमा कबिलतहा मिन अबदिक दाबूदा। तर्जमा सुनिए कितना खूबसूरत है। ए अल्लाह मेरे सजदे को तू मेरे लिए अपने पास अजर और खजाने का सबब बना और इससे तू मेरा बोझ हल्का कर दे और इसे मुझसे कबूल फरमा जैसे कि तूने अपने बंदे दाऊद के सजदे को कबूल फरमाया था। तो ये सजदे की जो तिलावत की दुआएं होती है उसमें आप लोग भी ये दुआ पढ़ सकते हैं। हम तो अमूमन एक ही पढ़ते हैं ना, जो सजदा वजीहा लिल्लज़ी खलक़हु, लेकिन ये दुआ और इससे मिलती जुलती एक और दुआ, एक दफ़ा हमने बुक मार्क्स छपवाए थे स्कूल के नाम से तो उसमें सजदा तिलावत की दुआ थी एक तरफ, तो वो फिर सबको दिए थे, बहुत हज़ारों में छपे थे कि कुरान पाक में अपने रखें, जहाँ भी सजदे की आयत आए तो वहाँ सजदे के साथ पढ़ लें। तो लिहाजा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इस वाक्य में हमारे अपने लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अबू सईद कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा गोया मैं सूरत स्वाद लिख रहा हूँ और जब आयते सजदा तक पहुँचा तो मैंने देखा कि कलम और दवात और मेरे आसपास की तमाम चीज़ों ने सजदा किया। उन्होंने अपना ये ख्वाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया, फिर आप इस आयत की तिलावत के वक्त बराबर सजदा करते रहे। अबू दाऊद में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर सूरत स्वाद पढ़ी और सजदे की आयत तक पहुँचकर मिंबर से उतर कर आपने सजदा किया और आपके साथ ही और सब ने भी सजदा किया। एक मरतबा आपने इसी सूरत की तिलावत की, जब आयते सजदा पर पहुंचे तो लोगों ने सजदे की तैयारी की। आपने फरमाया ये तो एक नबी की तौबा का सजदा था, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम सजदा करने के लिए तैयार हो गए हो, चुनाचे आप उतरे और सजदा किए। तो गोया कि अब ये जो आयत आ रही है इसको हम पढ़ के, तो यानी अगर हम भी चाहें तो सजदा कर सकते हैं, कर लें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो गुनाह नहीं होता इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने क्या किया, फ़गफ़रना लहू ज़ालिक, तो हमने इसे माफ़ कर दिया। वइन्ना लहू इंदना लज़ुल्फ़ा, और यकीनन हमारे पास इसके लिए मुकाम क़ुर्ब है, वह हुस्न मआब, और अच्छा इंजाम है। अब इस मुकदमे के बाद अल्लाह ताला दाऊद को क्या कहते हैं, या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्दी, हमने कहा दाऊद हमने तुम्हें ज़मीन में खलीफा बना दिया। فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ بس تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو. پہلی بات کسی کو خلیفہ بنایا جائے تو نمبر ایک کیا ہے کہ حق کا فیصلہ دو, حق کا ساتھ دو. دوسری بات وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى اور دیکھو اپنی خواہشوں کی پیروی نہ کرو. یعنی عادل منصف حکمران ہے یا ماں ہے یا فیصلہ کرنے والا, اس کو خواہشوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے. کیا ہوگا؟ فَيُدِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. اِنَّ الَّذِينَ يَدِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ یقیناً جو لوگ بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لیے کیا ہے؟ سخت عذاب ہے. بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ بس سبب اس کے کہ وہ بھول گئے حساب کے دن کو. یعنی اگر حساب کا دن یاد رہے تو انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل رکھتا ہے. تو گویا کہ یہاں حضرت داؤد کے اس قصے میں ہمیں سبق یہ ملا کہ اچھے حکمران کو صاحب فراست بھی ہونا چاہیے, مقدموں کے فیصلے خود کرنے چاہیے, کسی کے حالات سے خود نصیحت لینی چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی بہت عزت ہوگی جو عدل اور انصاف کریں گے. حدیث میں کہ عادل لوگ نور کے ممبروں پر رحمان کے دائیں جانب ہوں گے اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. یہ عادل وہ ہیں, اب یہ بھی سنیے, کہاں کرتے ہیں یہ فیصلے؟ عدالتوں میں؟ نہیں, یہ عادل وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال میں اور جن کے وہ مالک ہوں عدل و انصاف کرتے ہیں. بیوی, بچوں, گھر, سٹوڈنٹس, گروپ کے ساتھی, ارد گرد کسی سے کوئی فیورٹزم نہیں, کسی سے کوئی رعایت نہیں کہ اس سے چونکہ گھریلو تعلقات ہیں تو اس کو چھوٹ دے دو. ان سے تو زیادہ سخت رویہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں ایسے کسی تعلق کی بنیاد پہ وہ آپ کو گناہگار نہ کر دیں. تو یہاں بتا دیا گیا کہ انصاف بے لاکھ ہونا چاہیے. حدیث میں کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دوست اور سب سے زیادہ اس کے مقرب وہ بادشاہ ہوں گے جو عادل ہوں, اور سب سے زیادہ دشمن اور سب سے سخت عذاب والے وہ ہوں گے جو ظالم بادشاہ ہوں. حضرت امام, یہ ترمذی کی روایت ہے, امام مالک بن دینار فرماتے ہیں قیامت کے دن حضرت داؤد کو عرش کے پائے کے پاس کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ حکم دے گئے, داؤد جس پیاری, دردناک, میٹھی اور جاذب آواز سے تم میری تعریفیں دنیا میں کرتے تھے اب بھی کرو. آپ فرمائیں گے باری تعالیٰ اب وہ آواز کہاں رہی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے وہی آواز آج تمہیں پھر عطا فرمائی. پھر حضرت داؤد اپنی دلکش اور دل ربا آواز نکال کر نہایت وجد کی حالت میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے, جسے سن کر جنتی اور نعمتوں کو بھی بھول جائیں گے, اور یہ سریلی آواز اور نورانی گلا انہیں نعمتوں سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کر لے گا. کیا کچھ جنت میں ہونے والا ہے, ہم اس کے خواب ہی نہیں دیکھتے کیونکہ دنیا کے پلان اتنے ہیں, تو وہاں کی کیا فکر کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عدل اور انصاف والا بنا دے اور حقیقت میں ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں.
اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب